शकुनी जो है उस शाले ने ही पूरा घर बर्बाद कर दिया। यही कारण था, वो गांधार में ही उसको रहना चाहिए था, वो गांधार छोड़ करके यहीं रह गया कि हमारे जीजा जी तो अंधे हैं और जीजी ने आंख पर पट्टी बांध ली, हम आंख वाले हैं, हम सबको सही रास्ता पर ले चलेंगे। तो ऐसे बढ़िया सही रास्ता पर ले गया कि 100 भांजों में से एक भांजे को भी नहीं छोड़ा, सब राम राम हुआ। गोस्वामी जी का साला आ गया, रत्नावली जी का भाई, वो जैसे ही आया, आज अवसर था क्योंकि तुलसीदास जी महाराज बरखासन नामक गांव में एक प्रेमी भक्त के आग्रह पर गए हुए थे। उसने कहा कि देखो बहन, माता पिता भी तरस गए हैं, ऐसा भी कोई होता है कि निकट के निकट रहती हो और गांव अब तक नहीं गई हो, आज अवसर है, चलो। बोले उनकी बिना आज्ञा के कैसे जाऊं? अरे बोले इसमें आज्ञा कोई अन्य के साथ थोड़ी जा रही, अपने भाई के साथ, अपने पिता माता के यहाँ जा रही हो, आएंगे तो फिर उनको भी बुला लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कह सुन करके आग्रह पूर्वक ले गया और कुछ भवितव्यता ही ऐसी थी कि ये भी स्त्री स्वलभ स्वभाव वश बिना बताए अपने मायके चली गई। गोस्वामी जी महाराज रात्रि होते होते तक अपने गांव लौट आए। जैसे ही गांव लौट करके आए तो घर सूना दिखाई पड़ा। अब जब घर सूना दिखाई पड़ा तो आसपास पूछा, बता के गई थी कह देना कि वो वहां चली गई है। गोस्वामी जी ने पहले तो मन में थोड़े क्षुब्ध हुए, बाद में सोचा चलो कोई बात नहीं, चली गई तो चली गई, हम जाने नहीं देते थे, आज अवसर पाकर चली गई, ठीक है। पर ज्यों ज्यों अतिकाल होने लगा, रात्रि होने लगी कि चित्त की वृत्ति सहसा उस ओर अटकी और मन में, देखिए आप लोग अन्य कोई भाव मत लेना, गोस्वामी जी के चित्त में एक ही बात लगी कि अकेले घर में क्या करेंगे, हम भी तो वहां बहुत दिनों से नहीं गए हैं, हम भी वहां चले जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज भी सहज भाव से रात को ही वहां से विदा हो चुके थे। वर्षा ऋतु थी, यमुना जी में बहुत अधिक जल बढ़ा हुआ था और गोस्वामी जी को जल में तैरने का बाल्यकाल से भी बहुत सुंदर अभ्यास था। अयोध्या में गुरु जी ने ही सरयू जी में तैरना सिखा दिया था, फिर काशी में पढ़े, काशी में रहने वाले, गंगा जी के घाट पर रहने वाले तैरना न जाने ये तो ठीक नहीं है, तो वहां भी तैरना जानते थे। तो कोई आश्चर्य नहीं है बाढ़ के समय भी तैरने वाले युवक नदी के सहारे पार कर जाते हैं। अब यह बात अतिरंजित करके बहुत से लोग कहते हैं कि कोई मुर्दा बहा जा रहा था, उस मुर्दा को नौका समझा और सर्प को उन्होंने रस्सी समझा। ये घटनाएं हैं तो सही, पर ये बिलमंगल जी के चरित्र की घटनाएं हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र की ये घटनाएं नहीं है। तुलसीदास जी तो यमुना जी को पार करके और वे अपनी ससुराल पहुंच गए, तारीपतो गांव में पहुंच गए और वहां पहुंच करके प्रगाढ़ निद्रा में लोग सो रहे थे। आपने आवाज लगाई, आपकी आवाज सुनकर रत्नावली वो ससंभ्रम उठकर खड़ी हो गई, क्योंकि देखो प्रेम जो है ना दोनों तरफ होता है। गोस्वामी जी प्रेम में इतने अधीर हैं तो ये संभव नहीं है कि रत्नावली सो रही हुई। तार स्वामी जी दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, इधर रत्नावली भी उसी चिंतन में है, दुखित हो रही है, मैंने आज अनर्थ कर दिया, उनसे बिना आज्ञा लिए बिना पूछे यहां चली आई, आज रत्नावली को भी निद्रा नहीं आ रही है। जैसे ही पति की आवाज सुनी वह जग रही थी, इसलिए सहसा ससंभ्रम उठी और उठ करके इन्होंने तुरंत द्वार खोले। द्वार खोले तो यमुना जी पार करके आए थे, सारे वस्त्र गीले हो रहे थे, जल टपक रहा था। उन वस्त्रों से जल टपकते हुए देख करके रत्नावली जी ने कहा, अहो आप तो ऐसे प्रेमांध हो रहे हैं कि भादों की अंधेरी रात उसका भी भय आपको नहीं हुआ। चढ़ी हुई यमुना जी की धारा को देख करके भी आपको भय नहीं हुआ और लोक लज्जा का भी भय नहीं हुआ। ससुराल में तो लोग अपनी लाज शर्म बहुत बचा के रखना चाहते हैं और अर्धरात्रि के समय इस वेशभूषा में आप आए, आपको लोक लाज का भी भय नहीं रहा। मैंने तो यही सुना था कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने काशी में रहकर आगम निगम आदि का अध्ययन किया है और स्वामी विद्या का फल तो है भगवान में प्रेम हो जाना। लेकिन आश्चर्य है आपका इस सामान्य शरीर से इतना प्रेम है। मूल गुसाई चरित में बाबा श्री माधवदास जी कह रहे हैं, लाज न लागत आपको, लाज न आवत आपको, दौरे आयो साथ धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूं मैं नाथ। हे नाथ, स्वामी मैं छोटे मुंह बड़ी बात कर रही हूं, ऐसा प्रेम प्रशंसनीय नहीं है, धिक्कार के योग्य है। आप लोग ध्यान से सुने, ये रत्नावली नहीं बोल रही है। रत्नावली के अंतकरण में विराजमान होकर सर्वांतर्यामी श्री रघुनाथ जी जिह्वा के अग्रभाग पर बैठ करके बोल रहे हैं, ऐसा समझ। स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं, हाड़ मास की देह मम, हाड़ मास की देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तिसु आधी जो राम पद, अवस मिटे भव भी। बोलो रत्नावली माता की। ये तुलसीदास जी को उपदेश नहीं, ये तो हम सब जीवों को उपदेश दिया। रत्नावली कह रही है, हाड़ मास की देह मम, तामे इतनी प्रीति, हाड़ मास के शरीर में इतना प्रेम है, तिसु आधी जो राम पद, अवश्य मिट ही भव भी। उससे आधी भी यदि राम जी के चरणों में हो जाती तो ये भव भीत मिट जाती, संसार भय का नाश हो जाता। देखो कभी कभी किसी किसी बात को कहने का ऐसा एक विलक्षण मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में जब कोई बात कही जाती है भाई तो निशाना है ना, निशाना सही बैठ जाए लक्ष्य पर काम बन गया। आज सही निशाना बैठ गया और विद्वान तो है ही हैं, बस आज मोह के कपाट खुल गए और उनका अंतकरण ज्ञान से, प्रेम से, वैराग्य से, भक्ति से उद्भासित हो उठा और तुरंत उन्होंने नाराज नहीं हुए कि मैं वहां से चला आया और तुम अभी भी स्वागत सत्कार न करके हमको उपदेश व्याख्यान दे रही हो। कहा, देवी भाग्यशालिनी हो, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी, हम हृदय से प्रसन्न हैं, अब मुझे हृदय से अनुमति प्रदान करो, थोड़े दिन का चक्कर आया था संसार का, अब मैं भजन में लगना चाहता हूं। ऐसा कहकर रुके नहीं, तुरंत उल्टे पांव चल पड़े। अब वह व्याकुल हो गई। अब देखो अभी तक परिवार के लोग जग भी नहीं पाए थे, इतने बीच में ही मिनट दो मिनट में खेल हो गया। और सच्ची बात तो एक मिनट दो मिनट में ही खेल होता है। हाँ, सहजो बाई गोने के समय श्रृंगार करके जा रही थी ससुराल की ओर, और महात्मा चरणदास जी महाराज धूना पर विराजमान थे। चरणदास जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज आज्ञा दो, मैं जा रही हूं ससुराल, आज्ञा दो। महाराज ने कहा जाना है रहना नहीं, मरना विश्वास सहजो तनिक सुहाग पे तेने काय गुथायो शीश। जाना है रहना नहीं मरना विश्वास, अब तू हमसे आज्ञा मांग रही जाऊं। इतना सुनते सहजो भाई ने सारे श्रृंगार को उतार दिया और कहा बस अब भजन में जीवन व्यतीत करना है। और इधर लोग सहजो भाई को समझाना चाहते थे, उसके पहले ही घोड़ा बिदक गया बींद का दुल्हे का, और वो पेड़ से टकराया, घोड़े की भी मृत्यु हो गई और शरीर का जो पति था जो गोने में लेने आया था उसकी भी मृत्यु हो गई। और सहजो भाई ने ऐसा भजन किया है इतिहास के मर्मज्ञ महापुरुषों ने उसे 18वीं सदी की मीरा कहा। चरणदास सदगुरु मिले सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचा तान। आज गोस्वामी जी के एक शब्द में सबरी खेचा तान मिट गई। हाड़ मास की देह मम तामे ऐसी प्रीति, टिशु आधी जो राम पद अवश्य मिटे भव भी। अब तो आनंद हो गया। अब वह रो पड़ी और उसी समय रुदन सुनकर घर के लोग जग गए। क्या हुआ? रोते रोते रत्नावली ने सारी घटना बताई, ऐसे आए थे मेरे मुंह से ये निकल गया, अब वो चले गए। अब तो सब दौड़े और दौड़े ही नहीं मिल भी गए, लेकिन जो छूट चुका है पिंजड़े से, अब उस एक बार पिंजड़े से जो मुक्त हो चुका है उस मुक्त पंछी को फिर से पिंजड़े में लाना संभव नहीं। हाँ, जब तक पिंजड़े में नहीं फंसा था उसके पहले तो कोई पिंजड़े में फंसा सकता है, और एक बार पिंजरा छूट गया तो फिर पिंजड़े में फंसना फिर संभव नहीं है, फिर बहुत सावध चौकन्ना हो जाता है। एक बार फंसने के बाद फिर दोबारा चक्कर में नहीं आता, कोई आपको पकड़ नहीं सके। और उस समय आपको अपने गुरुदेव की वाणी याद आ गई। आपके गुरुदेव श्री नरहरि दास जी महाराज का एक दोहा है, नरहरि कंचन कामिनी, नरहरि कंचन कामिनी, इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरपूर। राम जी का आंख भर के दर्शन करना चाहते हो, हमारे वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करना चाहते हो, अवध बिहारिणी बिहारी जी का दर्शन करना चाहते हो, तो नरहरि कंचन कामनी इनते रहियो दूर, इनसे दूर रहना पड़ेगा, कंचन कामनी से दूर रहना पड़ेगा। चलो चलो सब कोई कहे पहुंचे बिरला कोई, एक कंचन एक कामिनी दुर्गम घाटी दोहे। ये नारायण स्वामी जी का दोहा है और मलुकदास जी का दोहा है। वहां न कोई पहुंचा, बहुत ऊंची बात कह रहे महाराज, वहां न कोई पहुंचा जहां बसत है राम, वहां न कोई पहुंचा, जहां बसत है राम महाविकट वह पंथ है, पेड़ा मारे काम। ये कामना वासना ही पेड़ा मार देती है, रास्ते में रुकावट पैदा कर देती है। तब क्या करें? आगे के दोहा में कह रहे मलूकदास जी, काम मिलावे राम सो। एक तो कहते पेड़ा काम पेड़ा मार देता है, इसलिए काम के कारण लोग राम जी तक नहीं पहुंचे, और ठीक इसके आगे की साक्षी में कह रहे हैं, यही तो संतों की गंभीर वाणियां हैं। आगे की साक्षी में कह रहे हैं, काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत दास मलू का यूं कहे, जो मन आवे प्रतीत। काम राम जी से मिला देता है। इसका मतलब क्या है? भगवत प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त जितनी भी कामनाएं हैं उनका त्याग कर दे, एक ही काम स्वीकार कर ले। इस जीवन में एक ही काम करना है, भगवत दर्शन। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन। बस जैसे भगवान सूर्य के प्रचंड प्रकाश के आगे जुगनुओं का प्रकाश अस्तित्वहीन हो जाता है, ऐसे ही भगवत प्राप्ति की कामना का उदय होते ही सारी कामनाएं अस्तित्व शून्य हो जाती है। यही काम मिलावे राम से, जो यह राखे जी। और आगे कह रहे हैं, नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार को, एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरा हो पार। साधकों के लिए कह रहे हैं, बोले ये अमल की घोटी है, और इस अमल का सेवन करने वाले संसार के भोगी मनुष्य हैं। हमें ऐसा कोई साधु संत फकीर नहीं मिला जो इस घोटी को पी करके भव सागर से पार उतर गया हो। इसलिए भैया, चाहे गृहस्थ साधक हो या विरक्त, भगवत प्राप्ति करनी है तो नारी मात्र को पुरुष मात्र से विरक्त होना पड़ेगा, और पुरुष मात्र साधक को नारी मात्र से विरक्त होना पड़ेगा। नारी मात्र साधक अपने चित्त में यही अनुभव करे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सो। सावधानी के लिए बात कही। हरिशरणम। अब तो महाराज आप जाग चुके थे, उस समय आपने मुक्त होकर के एक पद गाया, जो पद विनय पत्रिका में भी संग्रहित किया गया है। अब लो नसानी अब ना नसे, अब लो नसानी अब ना नसे, अब लो नसानी अब ना नसे, अब लो नसानी अब ना नसे। राम कृपा भव निसासी धानी,
राम कृपा भव सिदानी,
जागे तेरे ना जसे हो,
जागे तेरे ना जसे हो,
अब लो नसानी अब ना नसे,
अब लो नसानी अब नान से हो।
पायो नाम चारु चिंता मणि,
करते ना खसे
हाँ उड़ करते ना खसे हो।
श्याम रूप सुचि रुचिर कसौती
श्याम रूप सुचि रुचिर कसौती
चित कंचन खसे हो हा
चित कंचन खसे हो।
अब नो नसानी अब नानसे
अब नो नसानी अब नानसे
अब लो नसानी अब नानसे
अब लो नसानी अब नानसे
परवस जानी हस्यो इन इंद्रन
परवस जानी हस्यो इन इंद्रन
निज बस वे ना हसे हो
निज बस वे ना हसे हो
मन मधु कर पन कर तुलसी
मन मधु कर पन कर तुलसी
रघुपति पद कमल बसे हो
रघुपति पद कमल बसे हो
अब लो नसानी अब नानसे
अब लो नसानी अब नानसे
क्या बताऊं महाराज निश्चय के बिना हमारा सुना हुआ भी व्यर्थ हो जाता है। सत्संग में जो कुछ सत्पुरुषों के चरणों में बैठकर सुना गया है उस श्रवण के बाद यदि हमारे भीतर निश्चय नहीं होता है तो उस श्रवण का कोई विशेष फल नहीं। हाँ इतना फल तो उसी समय मिल गया उतनी देर झूठ बोलने से बच गया व्यसन करने से बच गया इतना तो फल मिल गया पर भव चक्र से छूटना भगवत चरणारविंद को प्राप्त करना यही सर्वोच्च फल है और इस फल की प्राप्ति के लिए निश्चय आवश्यक है। जब तक निश्चय नहीं करोगे बस अब लो नसानी अब ना नसे ये निश्चय करना पड़ेगा और निश्चय करते ही एक इसी जीवन में इसी शरीर से काम बन जाएगा। अब तक जो इस दुखप्रद संस्कृति के चक्र में हम पड़े रहे उसका मूल कारण है हमारा अनिश्चय। ऐसा नहीं कि हमको इसके पहले सत्संग न मिला होगा इसके पहले हमको धाम न मिला हो इसके पहले हमने कथा न सुनी हो कीर्तन न किया हो सब मिला सब हुआ पर अब तक हम निश्चय नहीं कर पाए इसलिए ये दशा होती रही। और ये निश्चय है इस बात का भी पक्का निश्चय है इस जीवन में इस शरीर से भी निश्चय नहीं हुआ तो फिर इसी चक्कर में फंसे रहना पड़ेगा। निश्चय क्या है जन्मांतर की प्रतीक्षा नहीं करनी है। आलस प्रमाद में नहीं पड़े रहना है इसी शरीर से इसी जीवन में भगवत दर्शन करना है भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना है। तब तक चैन नहीं लेना है जब तक हमारे ठाकुर हमको हृदय से लगा के ये न कह दें, भैया अब मत रो, अब तुम हमारे हो, अब क्यों घबराते हो, अब तुम हमारे हो चुके हो। जब तक उधर से आश्वासन न मिले तब तक लगे रहना है। देहम बा पातेयम कार्यम बा साधेयम।
जन्म कोटि लग रगड़ हमारी,
जन्म कोटि लग रगड़ हमारी,
परम शंभुनत रहूं कुमारी,
परम शंभुनत रहूं कुमारी।
कितना पक्का निश्चय है पार्वती जी का, तो करोड़ों जन्मों तक रगड़ करनी पड़ी नहीं, ये निश्चय करते ही वो कई जन्म की परंपरा तो उसी समय खत्म हो जाएगी। निश्चय कर लिया, गोस्वामी जी तो उन्मुक्त हो गए और वे प्रेम से, अब तो अहर्निश भगवान नाम का जप हो रहा है। गुरु जी का संग तो मिला ही था, थोड़ी देर का समय आया था। महाराज ये भी भगवान की लीला है, भगवान सब तरह का अनुभव करा देते हैं, ये भी लीला ही है। हरिशरण, ये मार्ग ऐसा है भगवत प्राप्ति का कि इस पे जो थोड़ी देर के लिए लटपटा कर लड़खड़ा कर साधक गिरता है तो वो गिरने के लिए नहीं गिरता है, अपितु और तेजी से दौड़कर चलने के लिए गिरता है। मार्ग बड़ा स्निग्ध है, स्वच्छ है, चिकना है, कई बार गिर जाता है, गिरने के लिए थोड़ी गिरता है, इसलिए गिरता है। ठाकुर जी कहते अब और तेजी से चले, अब पूरी ताकत से गोस्वामी जी चल पड़े हैं। इधर आप लोग विचार कर रहे होंगे कि रत्नावली जी का क्या हुआ होगा, वह इतनी उच्च कोटि की पतिव्रता महाभागा थी कि जब भाई लौट कर आया और उसने कहा कि अब वे लौट कर नहीं आएंगे, वे निकल चुके हैं। यह बात संबत 1589 की है, ये बात संबत 1589 की है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तिथि दसवीं तिथि थी और बुधवार का दिन था जब गोस्वामी जी ने गृहत्याग किया। भादों का महीना नहीं था, आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ कृष्ण दसवीं बुधवार, नौमी की रात को यमुना जी पार की है और दसवीं की प्रभात को प्रभात हो गई। अरे महाराज प्रभात सवेरे होता, आधी रात को ही प्रभात हो गया। तुलसीदास जी के जीवन का प्रभात अर्धरात्रि में ही हो गया और जब लौट करके उस रात्रि में ही ब्रह्मवेला तक लौट करके भाई आया और उसने आकर कहा कि वे नहीं आएंगे। इतना श्रवण करते ही रत्नावली ने गोस्वामी जी के चरणों का स्मरण करके उसी क्षण अपने शरीर का त्याग कर दिया, अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। भैया सती और पतिव्रताएं तो बहुत सुनी गई पर ऐसा पातिव्रत है रत्नावली जी का, उसी क्षण उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया, देह का त्याग। कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं वो कुछ जीवित भी रही, भजन भी किया, लेकिन विशेष पुष्ट मत मूल गोसाई चरित्रकार का यही है कि रत्नावली जी ने गोस्वामी जी के वियोग में अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया और श्री गोस्वामी जी महाराज वहां से चल करके तीर्थराज प्रयाग आए और प्रयाग में उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग किया और विरक्त स्वरूप को धारण किया। हमारे यहां संतों में स्वयं किसी स्वरूप को धारण करने की विधि मान्य नहीं है। अपने आप कोई चला जाए और मुड़ मुड़ा के अपने ढंग का तिलक लगा ले, अपने ढंग के वस्त्र पहन ले, तो उसको हमारे यहां विधि नहीं माना गया, उसको मनमुखी कहा गया, उसे गुरुमुखी नहीं कहा गया, उसको मनमुखी कहते हैं। तात्पर्य हमारे कहने का यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जहां मर्यादा का, शास्त्र की विधि का इतना अधिक आदर करने वाले हैं, वहां उन्होंने स्वयं ही गृहस्थ वेश का त्याग करके विरक्त वेश ग्रहण कर लिया। यह बात ठीक ठीक समझ में नहीं आती, इसलिए कुछ विद्वान महापुरुषों ने, इतिहासकारों ने यह माना है कि उस काल में प्रयागराज में रामानंद संप्रदाय के एक विशिष्ट महापुरुष विराजमान थे, सिद्ध कोटि के संत श्री स्वामी देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज, जिनका स्थान दारागंज प्रयाग में है, जिसे तुलसीदास जी का बड़ा अखाड़ा कहते हैं। और ऐतिहासिक रूप से ये प्रमाण है कि तुलसीदास जी वहां पधारे और देव मुरारी जी से उनका मिलन भी हुआ। तो एक मान्यता यह भी है कि उन्होंने पुनः विरक्त वेश देव मुरारी जी से ही अचला लंगूटी प्राप्त किया। आप लोग कहेंगे ये हो जाता, बोले हाँ ये हो जाता है। अभी आपको उदाहरण दें, पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने दीक्षा संस्कार श्री खाकी बाबा सरकार से प्राप्त किया और विरक्त वेश श्री फलाहरी जी प्रयाग हरेल वाले फलाहरी जी से विरक्त वेश प्राप्त किया। इस दास ने भी स्वरूप से ही विरक्ति का संस्कार प्राप्त किया है, स्वभाव से नहीं, पर दीक्षा संस्कार अनंतश्री संपन्न पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज से प्राप्त किया और विरक्त वेश का संस्कार पूज्य श्री खाकचोक वाले महाराज जी की कृपा से प्राप्त किया। तो हमारे यहाँ संतों में ये विधि भी है, गुरु महाराज के रहते हुए भी वे आज्ञा दें कि अमुक संत से तुम वेश ले लो तो लिया जा सकता है वेश, उसमें कोई अलग से दीक्षा नहीं लेनी पड़ती कि कोई, हाँ एक वेश देने की विधि है, वेश प्राप्त करने की विधि है, उस विधि से वेश प्राप्त किया, इसको वेशाश्रय कहते हैं। तो देव मुरारी जी से वेश प्राप्त किया, इस नाते से मलूक दासी से गुरु भ्राता का संबंध भी सिद्ध हो जाता है तुलसीदास जी का, क्योंकि देव मुरारी जी के मंत्र शिष्य दीक्षा शिष्य मलूक दासी है और अचला लंगोटी उनसे उन्होंने प्राप्त किया है। इस नाते से गोस्वामी जी ज्येष्ठ गुरु भ्राता हैं और कड़ा में एक महीने गोस्वामी जी ने राम कथा कही है, ये प्रमाण मिलता है। मलुकदासी महाराज ने, मलुकदासी उस समय युवावस्था में हैं और गोस्वामी जी वृद्धावस्था में हैं, गोस्वामी जी को आदर पूर्वक बुलाया है और उस कथा में देव मुरारी जी भी विराजमान रहे। एक महीने गोस्वामी जी ने कड़ा में गंगा जी के तट पर राम कथा कही, वहां आपने विरक्त वेशाश्रय प्राप्त करके अयोध्या जी के लिए प्रस्थान किया और अयोध्या जी में चातुर्माश व्रत किया, क्योंकि अषाढ़ तो महीना था ही, चातुर्माश लग गया था, चातुर्माश गोस्वामी जी ने अयोध्या जी में किया। और कहते हैं कि अयोध्या जी में चातुर्माश संपन्न करके कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चातुर्मास किया, पूर्णिमा व्रत संपन्न कर कार्तिक पूर्णिमा करके, कार्तिक के बाद अगहन मास आता है, अगहन मास में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया। कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी है, वैसे तो सभी धाम सार्वकालिक हैं, लेकिन संतों में प्रसिद्धि है सतयुग का धाम बद्रीनाथ, त्रेता का धाम रंगनाथ रामेश्वरम और कलयुग का धाम द्वापर का धाम द्वारिकापुरी और कलयुग का धाम श्री जगन्नाथ महाप्रभु, पतित पावन नीलाद्रि विहारी भगवान, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। गोस्वामी जी को सबसे पहले तीर्थ यात्रा के क्रम में जगन्नाथ जी की याद आई, श्री गोस्वामी जी जगन्नाथ जी पहुंचे। जगन्नाथ जी पहुंचने में उन्होंने 25 जगह पर विश्राम किया, 25 जगह पर विश्राम करते हुए गोस्वामी जी जगन्नाथपुरी पहुंचे। इनमें दो स्थलों से मूल गुसाई चरित में विशेष घटना का उल्लेख है, एक तो दुवोली ग्राम, दुवोली ग्राम में ब्राह्मण का लड़का हरिराम, जिसकी चर्चा हम प्रसंगवश पहले ही कर चुके हैं, उद्दंड लड़का हरिराम धूल मिट्टी पत्थर फेंक रहा था और इसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि अरे हरिराम, तू ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर राक्षस जैसा आचरण करता है, तुझे तो ब्रह्म राक्षस होना पड़ेगा। इसी के कारण इसी ने आगे चलकर गोस्वामी जी को हनुमान जी का पता बताया। एक कथा आप लोग सुन चुके हैं। और दूसरा एक गांव चेफुल नामक गांव, जहां की चारु कुंवरी नाम की एक वृद्धा विधवा ब्राह्मणी थी, उसने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का विशेष आदर किया, अपने घर में रुकाया और खूब गोस्वामी जी की सेवा की। चरखा काट करके अपना जीवन निर्वाह करती थी, बहुत सात्विक कमाई थी उसकी। जितने में पेट भर जाए, गुजर बसर हो जाए, उतना ही काम करती, बाकी नाम जप करती रहती थी। इसकी यहां संतों की लाइन लगी रहती थी, कोई ना कोई संत आके आसन लगाता था। और घर में ही महाराज अभाव है और साधु आते रहे तो कैसे काम चले। तो गोस्वामी जी इतने प्रसन्न हो गए इसकी सेवा से, बोले माताजी कुछ चाहिए तो बताओ, हम प्रसन्न हैं। बोले बाबा जिसके लिए शरीर मिला है वो काम हो जाए। बोले वो तो हो जाएगा, राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा, अब तू ठाकुर जी के चरणों को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और कुछ मांग ले? बोले और सब कुछ मेरे को रुका चाहिए। बुढ़िया बोली इससे भी बड़ी कोई चीज होती है, कुछ नहीं चाहिए। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अच्छा मैया एक आशीर्वाद में अपनी तरफ से दे रहे हूं। कौन आशीर्वाद? बोले आज के बाद तू जो चीज छू देगी वो चीज खत्म नहीं होगी। भले ही तेने दो मूर्ति चार मूर्ति की रसोई बनाई हो, पर 50 साधु की भी जमात, 100 साधु की भी जमात आ जाएगी तो रसोई घर में कमी पड़ेगी नहीं। तेरा कुठार सदा भरा रहेगा, तेरी बनाई रसोई कम नहीं पड़ेगी। खूब सेवा कर, अब चिंता रहती है धंधे की, उसकी चिंता मत कर। ये आशीर्वाद आपने दिया। और इस प्रकार से जगन्नाथपुरी पहुंचे और जगन्नाथ जी में जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके श्री गोस्वामी जी महाराज प्रेम में अधीर हो गए। बहुत दिनों तक जगन्नाथपुरी उन्होंने निवास किया। एक बार जगन्नाथपुरी मंदिर में वे दर्शन करने गए तो उन्होंने देखा कि किसी ग्रंथ का पाठ हो रहा है और बहुत से लोग बैठ करके सुन रहे हैं। गोस्वामी जी भी वहां बैठ गए। कुछ समय तक वे उड़ीसा में रह चुके थे, इसलिए उड़ीसा की भाषा का बोध भी गोस्वामी जी को हो चुका था। संतों को बहुत भाषाओं का ज्ञान हो जाता है, क्यों कभी कहीं रहे कभी कहीं रहे, जहां रहे वहां की भाषा सीख जाते हैं। उड़िया भाषा का ज्ञान गोस्वामी जी को हो चुका था। गोस्वामी जी बैठ गए तो वहां उड़ीसा के जो जगन्नाथ दास जी महाराज एक संत हुए हैं, उन जगन्नाथ दास जी ने एक जगन्नाथी भागवत लिखी है, संभवतः गीता प्रेस से प्रकाशन भी उसका हो चुका है क्या? नहीं हुआ? हुआ है, परमेश्वर प्रसाद जी कह, ईश्वर प्रसाद जी कह रहे हैं तो पक्की बात। जगन्नाथी भागवत उड़िया भाषा की है, वो दोहा चौपाई में, वहां के छंद के अनुसार दोहा चौपाई में। उसको सुनकर गोस्वामी जी को ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि भागवत महापुराण तो संस्कृत भाषा में है, उसका लाभ तो गिने चुने संस्कृत के पंडित ले पाते हैं, लेकिन देखो एक जगन्नाथ दास जी नाम के संत ने यहाँ की लोक भाषा में श्री कृष्ण कथा लिखी है तो कितने जीवों को इससे लाभ मिल रहा है। गोस्वामी जी ने विचार किया हमको भी कभी ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे तो हम राम कथा भाषा में ही लिखेंगे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी से उनको ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि संस्कृत भाषा उतनी अधिक लोगों को लाभ नहीं दे पाएगी क्योंकि सब उसके ज्ञाता नहीं है, ये विचार आया। और कुछ दिन आपने वहां निवास किया और निवास करके निहाल हो गए और वहां आपने एक अलौकिक कार्य और किया। क्या कार्य किया? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की एक प्रति 24,000 श्लोक अपनी लेखनी से लिखी। एक ग्रंथ लेखन भी एक प्रकार से एक साधना है, उपासना है। तो आपने वाल्मीकि रामायण की प्रति लिखी और वहां से आप चल करके द्वारिकापुरी गए, द्वारिकाधीश का दर्शन किया, जगन्नाथपुरी से द्वारिका गए, फिर बद्रिकाश्रम गए, बद्रिक आश्रम जब गोस्वामी जी गए तो नरनारायण भगवान का आपको दर्शन हुआ और वेद व्यास जी का साक्षात दर्शन हुआ। व्यास जी ने स्वयं प्रकट होकर के गोस्वामी जी को दर्शन दिया, ये उनकी पात्रता। और फिर वहां से वे मान सरोवर के लिए चल पड़े। मान सरोवर जाकर के वहां दिव्य संतों का दर्शन समागम हुआ और वहां सिद्ध संतों की सहायता से योग बल से आपने सुमेरु गिरि का भी दर्शन प्राप्त किया और वे सिद्धों की जमात के साथ नीलाचल पर्वत पर पहुंच करके नीलगिरी पर्वत, जिसको नीलगिरी कहते हैं ना, नीलाचल नीलगिरी, कागभुसुंड जी महाराज जहां विराजते हैं, कागभुसुंड जी का दर्शन हुआ और कागभुसुंड जी का साक्षात दर्शन भी किया और कथा भी सुनी। कौन सी कथा? जो रामचरितमानस वाली कथा है, यही कथा कागभुसुंड जी वहां सुना रहे थे। रामचरितमानस की कथा भी कागभुसुंड जी की वाणी से आपने सुनी। फिर कैलाश पर्वत का दर्शन किया, कैलाश पर्वत पर आपको भगवान उमा महेश्वर का दर्शन हुआ और वहां से वे लौट करके फिर काशी आ गए। आप लोग कहेंगे आपने तो लंबी चौड़ी तीर्थ यात्रा फट से कह दी, क्या करें, ऐसा न कहें तो महीना भर में भी तुलसीदास जी का चरित्र पूरा होगा नहीं। इस तीर्थ यात्रा में गोस्वामी जी को कितना समय लगा? इस तीर्थ यात्रा में गोस्वामी जी को 14 वर्ष 10 महीना और 17 दिन लगा। 14 वर्ष 10 महीना और 17 दिन में गोस्वामी जी की यह यात्रा पूरी हुई और इस यात्रा को पूरी करके गोस्वामी जी काशीपुरी में अविचल विराजमान हो गए। और अब आपको दर्शन की व्याकुलता राम जी के जगी। तब हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं कि प्रेत ने पता बताया और आपको प्रेत की कृपा से, बुरा नहीं मानना, सबके भीतर तो भगवान ही है, जड़ चेतन जब जी जत सकल राम मय जान, उसके अंतर्यामी तो भगवान ही हैं, इसलिए जहां कहीं से भी कृपा होती मूल में भगवान की ही कृपा होती है, माध्यम कोई हो। आप श्री चित्रकूट पधारे और चित्रकूट में आकर के आपके चित्त को बड़ा भारी संतोष हुआ। अब चित्रकूट में कैसे प्रभु दर्शन होगा इसकी चर्चा चाहते तो हम आज ही करना थे, लेकिन अब समय अधिक हो गया है इसलिए यहीं विराम करते हैं। और चित्रकूट में किस प्रकार से गोस्वामी जी को कई बार दर्शन हुआ और कैसे रामचरितमानस का प्रणयन हुआ, आगे के चरित्र यथामति यथा समय भगवत कृपा से हम कल निवेदित करेंगे।
है नमन पाद पद्मों में बार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। है नमन पाद पद्मों में बार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीव निस्तार है तू अवतार बाबा तुलसी। पायस पाय अन्नपूर्णा से विपदा भी बरदान बनी,
पायस पाय अन्नपूर्णा से विपदा भी बरदान बनी,
हरि प्रेरित गुरु नर हरिदास ने करी अचानक कृपा बनी।
हरि प्रेत गुरु नरहरिदास ने करी अचानक कृपा गनी,
आशेष सनातन की सहाय भय विद्या वेद पुराण धनी,
शेष सनातन की सहाय भय विद्या वेद पुराण धनी,
बसा गेह मन हसाने रजु रत्नावली पाय पत्नी,
हाँ बसा गेह मन हसाने रजु रत्नावली पाय पत्नी।
पुनि जागे तुरत सुनी पत्नी की फटकार। बाबा तुलसी
कली कुटिल जीव निस्तार तू अवतार। बाबा तुलसी पुनि जगे तुरत सुनी पत्नी के फटकार। बाबा तुलसी कली कुटिल जीव निस्तार तू अवतार। बाबा तुलसी
काशी बसी बापता प्रेत से हनुमत का दर्शन पाया।
काशी बसी बापता प्रेत से हनुमत का दर्शन पाया।
हनुमत का दर्शन पाया।
हनुमत का दर्शन पाया।
हनुमत कृपा राम दर्शन कर हुआ आपका मन पाया।
हनुमत कृपा राम दर्शन करी हुआ आपका मन पाया।
चित्रकूट के घाट का दोहा जन जन कंठ कंठ छाया।
चित्रकूट के घाट का दोहा जन जन कंठ कंठ छाया।
रामचरित मानस प्रकाश हित परम पुण्य अवसर पाया।
रामचरित मानस प्रकाश हित परम पुण्य अवसर आया।
शिव कृपा पुरस्सर किए ग्रंथ तैयार बाबा तुलसी।
कली कुटिल जीव निस्तार तू अवतार। बाबा तुलसी शिव कृपा पुरस्सर किए ग्रंथ तैयार बाबा तुलसी। कली कुटिल जीव निस्तार तू अवतार। बाबा तुलसी
है नमन पाद पद्मों में
बाबा तुलसी। कली कुटिल जीव निस्तार तू अवतार। बाबा तुलसी
नमन पाद पद्मों में बारंबार।
बाबा तुलसी कली कुटिल जीव निस्तार तू अव